بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پویتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وزق الله
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। आज शनिवार है, जनवरी की 23, जमादी सानी की 9 और देई माह की 4 तारीख। एक घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आरंभ हम विगत की ही भांति विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद दैनिक कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा आप सुनेंगे। राजनैतिक चर्चा के उपरांत आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाए जाएंगे, नया सवेरा और ईरान भ्रमण। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचारों को हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति डॉक्टर रूहानी ने देश में कोरोना के फैलाव की नई लहर की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और अमेरिका की पहचान अलग अलग है और दोनों के बीच मूलभूत मतभेद हैं। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक बैंक खाता खोला है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में एक मिसाइल के प्रवेश के बाद रियाज हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। और अब आप मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रूहानी ने देश में कोरोना वायरस के फैलाव की नई लहर की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर हसन रूहानी ने शनिवार को कोरोना की राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मृतकों के आंकड़ों में कमी सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उनका कहना था कि जिस प्रकार सरकार ने कोरोना की बीमारी की रोकथाम के लिए जबरदस्त कार्रवाइयां की हैं, उसी तरह जनता ने भी सरकार का हर चरण पर साथ दिया। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान चिकित्साकर्मियों, स्वयंसेवी बलों, नागरिक संस्थाओं और अन्य दूसरी संस्थाओं ने कोरोना से मुकाबले के मार्ग में एक दूसरे का साथ दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हालिया 1-2 सप्ताह के दौरान अंजाम दी गई कार्रवाइयों की वजह से कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आती जा रही है। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस बात पर बल देते हुए कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी और बीमारी के फैलाव में कमी का क्रम जारी रहना चाहिए कहा। कोरोना वैक्सीन के आने तक अगले 5 से 6 महीनों के दरमियान बहुत ही सूक्ष्मता के साथ मेडिकल प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी और अमेरिका की पहचान अलग अलग है और दोनों के बीच मूलभूत मतभेद हैं। मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि हम एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि हम अपनी सभ्यता को छोड़कर एक अन्य अस्तित्व में बदल जाएं। اعتماد سماچار پتر کو دیے انٹرویو میں ایران کے ودیش منتری نے کہا کہ ہمیں پرسپر سمان کے آدھار پر پڑوسیوں کے بارے میں نیتیاں بنانی چاہیے۔ ایک بڑے دیش کے ناطے ایران کو چاہیے کہ وہ اس مارگ پر قدم آگے بڑھائے۔ ظریف کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ آشا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے پڑوسی بھی ہماری طرح اس معاملے میں ویوہار کریں گے۔ ودیش منتری جواد ظریف نے کہا کہ صدام نے جب یہ سوچا کہ کھمتا کے حساب سے ایران کمزور ہے تو اس نے ایران پر یدھ تھوپ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کھیتریہ دیشوں نے بھی صدام کی سہایتا کر کے ایران کے ورودھ ایک پرکار سے یدھ آرمبھ کر دیا، اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے اس یدھ میں صدام کو 75 ارب ڈالر کی سہایتا کی۔ ودیش منتری کا کہنا تھا کہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے جو اس سمے سعودی عرب کے یوراج تھے امریکیوں سے کہا تھا کہ سانپ ارتھات ایران کا سر کچل دو۔
ایران کے ودیش اپ منتری نے کہا ہے کہ پرمانو سمجھوتا ایک صحیح سانچہ ہے جس کے آدھار پر ہی وارتا کی جانی چاہیے۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نئی سرکار کے ساتھ سیدھے سمپرک کی ہماری کوئی اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے اٹلی کے لا ریپبلیکا سماچار پتر کو دیے گئے انٹرویو میں جو شنیوار کو پرکاشت ہوا امریکہ میں نئی سرکار اور ٹرمپ کے سمرتھکوں کے کانگریس پر حملے کے بارے میں کہا، جو کچھ واشنگٹن میں ہوا وہ امریکی لوک تنتر کا واستوک روپ ہے۔ عراقچی نے کہا کہ اب تو دنیا میں کسی بھی دیش سے یہ کہنے کی امریکہ کو ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنی راجنیتک سمسیاؤں کا سمادھان کس پرکار سے کرے۔ عراقچی نے پرمانو سمجھوتے کے سمبندھ میں جو بائیڈن سرکار سے ایران کی مانگ کے سندربھ میں کہا کہ تہران نے پوری سدبھاونا کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے جے سی پی او اے پر عمل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب امریکہ کی نئی سرکار کو چاہیے کہ وہ پچھلی سرکار کی غلطیوں کی بھرپائی کرے۔
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि देश में कोरोना पर नियंत्रण का काम तेजी से जारी है और इस घातक वायरस के कारण मरने वालों की संख्या निरंतर कम हो रही है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान में कोरोना के 6,207 नए मामले सामने आए, जिनमें से 495 लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 13,67,032 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी तरह बताया कि पिछले 24 घंटों में 69 लोगों की कोविड-19 की बीमारी से मौत हो गई और इस प्रकार ईरान में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 57,294 हो गई है। डॉक्टर सीमा سعادت لاری نے بتایا کہ اب تک دیش میں 11,58,475 لوگ کورونا وائرس کو مات دے چکے ہیں۔
اسرائیل کے سینے معاملوں سے وشیش ایک ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ زائونی شاسن کے ایئر ڈیفینس سسٹم میں ایران کے ڈرونوں کے مقابلے کی شمتا نہیں ہے۔ العربی الجدید سماچار پتر نے اسرائیل ڈیفینس ویب سائٹ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ایرانیوں نے اسرائیل کے ایئر ڈیفینس سسٹم کو نسٹ کرنے کی شمتا پیدا کر لی ہے۔ یہ ویب سائٹ لکھتی ہے کہ زائونی شاسن کا ایئر ڈیفینس سسٹم بہت مضبوط ہے جس میں میزائل کا مقابلہ کرنے کی شمتا پائی جاتی ہے، لیکن اس میں ڈرونوں سے مقابلے کی اچھی شمتا نہیں پائی جاتی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ایئر ڈیفینس سسٹم میں ڈرون سے نپٹنے کے لیے کوئی بھی اچت سمادھان نہیں ہے۔ اس زائونی ویب سائٹ نے بھوشوانی کی ہے کہ زائونی شاسن کے ورد ایران کے حملے کی پہل ڈرون ویمانوں سے ہوگی۔ رپورٹ کے انوسار یہ ڈرون پہلے چرن میں میزائل کا مقابلہ کرنے والے ایئر ڈیفینس سسٹم کو لکش بنا کر میزائل حملے کی بھومی کا پرشست کریں گے۔
بھارت کے سب سے بڑے راج اتر پردیش میں ایک بار پھر سمویدھان کی دھجیاں اڑ گئیں۔ پراپت رپورٹ کے انوسار اتر پردیش کے لوک نرمان وبھاگ PWD نے ایودھیا میں رام مندر نرمان کے لیے ایک بینک کھاتا کھولا ہے۔ 19 جنوری کو وبھاگ کے پرمکھ ابھینتا راجپال سنگھ نے لکھنؤ میں HDFC بینک کی MG Road شاخہ کو پتر لکھ کر PWD رام مندر ویلفیئر نام سے ایک کھاتا کھولنے کی گزارش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں لوک نرمان وبھاگ دوارا اپنے سبھی کرمچاریوں کا ایک دن کا ویتن سوچھا سے رام مندر نرمان کے لیے دان کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں بینک نے ترنت ایک اکاؤنٹ کھول دیا۔ ज्ञात रहे कि भारतीय संविधान का 27वां अनुच्छेद सरकार को किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स इकट्ठा करने से रोकता है तथा सरकारों को धर्म के नाम पर खर्च करने से भी मना करता है। संविधान में आया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसे किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए खर्च किया जाना चाहिए।
सऊदी अधिकारियों का कहना है कि राजधानी रियाज में एक मिसाइल के प्रवेश के बाद रियाज हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार जैसे ही रियाज में एक मिसाइल के प्रवेश की सूचना मिली कई उड़ानों को दम्मान हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। रियाज हवाई अड्डे की वेबसाइट ने कई उड़ानों में विलंब की भी रिपोर्ट दी है। इन रिपोर्टों में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह विषय नगर को लक्ष्य बनाने के प्रयास से संबंधित है या नहीं। फ्लाइट रडार वेबसाइट के अनुसार रियाज हवाई अड्डे में विमानों के संचालन को रोक दिया गया है तथा उड़ानों को दम्मान हवाई अड्डे की ओर मोड़ा जा रहा है। इसी वेबसाइट के अनुसार रियाज हवाई अड्डे की सीमा में दो विमानों को निकट होते हुए देखा गया किंतु वे नीचे नहीं उतरे और चक्कर लगाते रहे। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि रियाज हवाई अड्डे ने अकारण ही उड़ानों को विलंबित किया है। कुछ लोगों का कहना है कि यमन से फायर किए गए एक मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से फायर किए गए रॉकेट के टकराने से रियाज में एक भीषण धमाका हुआ।
यमन युद्ध के बारे में सऊदी अरब के लहजे में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि उनका देश यमन में व्यापक युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है और इस मुद्दे पर अमेरिका की नई सरकार से समन्वय हो सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने सऊदी मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि सऊदी अरब यमन के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध को खत्म करना चाहता है। उन्होंने अल अरबिया टीवी चैनल से बात करते हुए जो शुक्रवार की रात प्रसारित हुआ दावा किया कि सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन पर हमला करने वाले देशों का गठबंधन यमन में युद्ध विराम में रुकावट नहीं है बल्कि अंसारुल्लाह आंदोलन इस युद्धग्रस्त देश में युद्ध विराम में सबसे बड़ी रुकावट है। ट्रंप प्रशासन के समय की तुलना में नरम लहजा अपनाते हुए सऊदी विदेश मंत्री ने यमन युद्ध के बारे में अमेरिका की नई सरकार की नीतियों के संबंध में कहा कि हम समझते हैं कि अगर बाइडेन सरकार ने यमन युद्ध के मुद्दे का जायजा लिया तो उसे पता चलेगा कि सऊदी प्रशासन और यमन के विरुद्ध जंग करने वाले गठबंधन का लक्ष्य इस मामले में बाइडेन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है।
अमेरिका यमन के जन आंदोलन अंसारुल्लाह को आतंकवादी गुट घोषित किए जाने की फिर से समीक्षा कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने खबर दी है कि पूर्व सरकार की ओर से यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन को आतंकवादी गुट घोषित किए जाने की समीक्षा शुरू कर दी गई है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने पूर्व प्रशासन की ओर से अलहूसी आंदोलन को आतंकवादी गुट घोषित किए जाने के फैसले की फिर से समीक्षा शुरू कर दी है और जल्द ही इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा।
इराक के एक जानकार सूत्र ने बगदाद एयरपोर्ट के निकट अमरीकी छावनी पर रॉकेट हमले की सूचना दी है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बगदाद में अल अरबिया चैनल के रिपोर्टर ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक रॉकेट हमले की सूचना दी। साइबेरियन न्यूज वेबसाइट ने भी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट विक्टोरिया सैन्य छावनी पर रॉकेट हमले की खबर दी है। इस वेबसाइट के अनुसार इस हमले के बाद अमरीकी हवाई जहाज लगातार बगदाद पर उड़ाने भरते रहे। साइबेरियन न्यूज ने लिखा कि अमरीका की सीराम एयर डिफेंस सिस्टम इस रॉकेट को रोकने में नाकाम रहा।
एक अमरीकी अधिकारी ने बताया है कि वाशिंगटन में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा पर तैनात नेशनल गार्ड्स के सुरक्षा बलों में से 100 से 200 के बीच कोरोना पाया गया है। अमरीकी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा पर तैनात नेशनल गार्ड्स के सुरक्षाकर्मियों को कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आसपास बने पार्किंग स्थलों पर भेज दिया गया जहां गर्म करने की सुविधा नहीं थी। नेशनल गार्ड के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि 25,000 सुरक्षा कर्मियों में से समारोह की सुरक्षा पर तैनात कितने कर्मियों को कांग्रेस से बाहर भेजा गया है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
میں ہوں محمد علی قمی اور آپ سن رہے ہیں دینک پروگرام راجنیتک چرچا۔ چرچا کے وشے ہیں ایرانی تھل سینا کا سینابھیاس، اقتدار 99 کا دوسرا دن، بائیڈن کے شاسن کال میں واشنگٹن ماسکو سمبندوں میں تناؤ بڑھنے کی سمبھاونا، بھارت پرشاست کشمیر میں بھاری ہمپات سے جن جیون پربھاوت، اڑانے کینسل، اور کشمیر میں ڈاکٹروں کی کووڈ سمیتی کے ادھیکش کی کشمیری جنتا سے کووڈ کا ٹیکہ لگوانے کی اپیل۔ چرچا میں پہلے ایرانی تھل سینا کے سینابھیاس اقتدار 99 کے دوسرے دن پر پیش ہے جاسک سے حسین بائے کی رپورٹ، پیش کر رہے ہیں ساتھی رویش زیدی۔
ہرمزگان پرانت کے دکشن پوروی بھاگ میں جاسک کا مرو استھلی علاقہ، ایسا علاقہ جہاں چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے گزر کر سینابھیاس کی جگہ پہنچتے ہیں۔ تھل سینا کی کمانڈو اکائی کی جوانوں کی موجودگی خود اس کی رکشا کی کہانی بتاتی ہے۔ ہمیں گرو ہے کہ ہم اس سرزمین کی رکشا کرنے والوں میں شامل ہیں۔ کمانڈو سینابھیاس اقتدار 99 کے دوسرے دن بلند حوصلے کے ساتھ تیار ہیں۔ سینا کی 221 بریگیڈ جو ترنت کاروائی کرنے والی اکائی ہیلی بورن کاروائی کے لیے تیار ہے۔ کچھ منٹ بعد کمانڈوز ضروری ہتھیاروں و سامان سے لیس ابھیاس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم سمندر کے کنارے ہیلی بورن ابھیاس کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہیلی کاپٹر تٹ پر پہنچتے ہیں تو طوفان آ جاتا ہے۔ اس وقت سمندر میں طوفان آ رہا ہے۔ ایسی استھتی میں ہیلی بورن آپریشن کٹھن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی استھتی میں بھی کمانڈوز کو ضرورت کے وقت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ کچھ ہی سیکنڈ میں سینابھیاس کی جگہ پر دھواں اور آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ اس ابھیاس میں آگ کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ کچھ کھڑوں کے بعد ہیلی کاپٹروں کے لوٹنے پر کمانڈوز کو فوراً شیتر کو چھوڑنا ہے۔ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا، دشمن کا ٹھکانہ تباہ ہو گیا۔ ابھیاس کا یہ بھاگ سفلتا کے ساتھ انجام پایا۔ پچھلی رات کو سین ابھیاس میں حملہور ہیلی کاپٹر 214 نے، جس میں رات میں اڑنے کے سسٹم لگے ہوئے ہیں جو حال ہی میں سینا کے حوالے کیا گیا ہے، اس نے تٹ پر فوجیوں کو اتارنے اور فائرنگ کی کاروائی انجام دی۔ سینا کے حوالے کیے گئے ان نئے ہیلی کاپٹروں میں رات کے اندھیرے میں اڑان بھرنے کی سویدھا والے سسٹم لگائے گئے ہیں، جس سے فوجی رات میں دن کی طرح سین آپریشن انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کٹھن کام ہے۔ دنیا کے کچھ دیشوں کے پاس ہی اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ सेना के चीफ कमांडर ने, जो इस अभ्यास में मौजूद थे, इस अभ्यास के लक्ष्य को बयान करते हुए कहते हैं,
निशान दहंदे आज़म व इरादे मोहकम है।
इस अभ्यास से इस्लामी गणतंत्र ईरान के सशस्त्र बल का अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने और दुश्मन के कैलकुलेशन की संभावित गलती का सही वक्त पर मुंह तोड़ जवाब देने का दृढ़ संकल्प जाहिर होता है। सेना का इक्तदार 99 अभ्यास देश की उच्च रक्षा क्षमता का प्रदर्शन है, ऐसी रक्षा क्षमता जिसका संदेश क्षेत्र की रक्षा और हर तरह के खतरे से निपटने की तैयारी को दर्शाता है। हुर्मुज़गान प्रांत के जास इलाके से IRIB के लिए हुसैन बाए की रिपोर्ट।
जो बाइडेन के शासनकाल में वॉशिंगटन मॉस्को संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है। रूसी ड्यूमा और सेनेट ने रूस के खिलाफ अमेरिका की ताजा पाबंदियों का उसी तरह जवाब देने के लिए मॉस्को से तैयार रहने की मांग की है। पेश है मॉस्को से सैयद अली दाराबी की रिपोर्ट, साथ ही सैयद मीसम की जबानी।
प्रेसिडेंट सशा जो बाइडेन
व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के सत्ताकाल की शुरुआत रूस के साथ अमेरिका के तनाव बढ़ने का आगाज होगा, ये बहुत से टीकाकारों का ख्याल है जिन्होंने बाइडेन के नजरिए की समीक्षा की है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के मुकाबले में ज्यादा आक्रामक व नाराज हैं और जो देश वाशिंगटन के घटक नहीं समझे जाते उनके साथ बहुत ही कड़ा रवैया अपनाएंगे। व्हाइट हाउस में बाइडेन का आना रूस के लिए अच्छा नहीं है, मुमकिन है दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व स्तर पर तनाव पहुंच जाए। क्रेमलिन का मानना है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टी के नेताओं में मॉस्को वाशिंगटन के बीच संबंध बेहतर करने का इरादा नहीं पाया जाता। पिछले वर्षों में वाशिंगटन ने रूस के साथ संबंध बेहतर करने का इरादा जाहिर नहीं किया और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के दौर में भी संबंधों पर बर्फ पड़ी रहने की संभावना है। रूसी ड्यूमा और सेनेट ने रूस के खिलाफ अमेरिका की ताजा पाबंदियों का उसी तरह जवाब देने के लिए मॉस्को से तैयार रहने की मांग की है। रूस से जर्मनी को गैस पाइपलाइन बिछाने पर पाबंदी सहित रूस के खिलाफ पाबंदियां अमेरिका की ट्रंप सरकार के एजेंडे में थी, जिसे बाइडेन सरकार और तेजी से आगे बढ़ाएगी। अलबत्ता रूस के पास इसका जवाब देने के लिए कई तरह के हथकंडे हैं। रूस के उच्च अधिकारी, माहिर और टीकाकार बाइडेन के रूस विरोधी नजरिए का जिक्र करते हुए उनके दौर में वाशिंगटन मॉस्को संबंध के क्षितिज को पहले से ज्यादा धुंधला मान रहे हैं। मॉस्को से IRIB के लिए सैयद अली दाराबी की रिपोर्ट।
और अब भारत का रुख करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित है, उड़ानें कैंसिल हो गई हैं और कश्मीर में डॉक्टरों की कोविड समिति के अध्यक्ष ने कश्मीरी जनता से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। पेश है श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
कश्मीर घाटी में एक बार फिर भारी हिमपात के कारण जमीन और आसमानी संपर्क देश और बाकी दुनिया से कट कर रह गया है। श्रीनगर के एयरपोर्ट पर आज कोई भी फ्लाइट नहीं उठ सकी, जिसके फलस्वरूप भारी रश के कारण वहां पर स्थिति इंतहाई तनावपूर्ण भी हुई और लोगों ने प्रशासन से मुतालबा किया कि वह उनके रिहाइश का भी इंतजाम करें। प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने पहले ही मौसम विभाग की पेशनगोई को सामने रखते हुए यात्रियों से यह कहा था कि वो तभी सफर करें जब उनसे कहा जाएगा। इस बीच श्रीनगर जम्मू मार्ग बंद पड़ा है, जबकि कई अन्य मार्गों पर भी भारी हिमपात के कारण यातायात ठप पड़ी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज रात तक यह सिलसिला जारी रहेगा। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि कुछ दिवस पहले ही घाटी में भारी हिमपात हुआ था और मौसम विभाग ने एक बार फिर पेशनगोई की थी कि कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर 5 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इस बीच कोविड वैक्सीन के हवाले से कश्मीर के जो कोविड डॉक्टरों के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नवीद, उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के तमाम निवासियों को ये सूचित करना चाहता हूं कि जब उनकी बारी आए तो वो जरूर और जरूर कोविड वैक्सीन करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी शुरुआत अपने आप से की और मैं लोगों पर यह बल देता हूं कि वो फौरी तौर पर वैक्सीन करें।
ये वैक्सीन जो है जो यहां पे आया है, जो मैन्युफैक्चरर्स की क्लेम है, ये 60% एफिकेसी है इसकी, और जब सेकंड डोज लगाते हैं तो क्लेम किया जा रहा है कि इसकी एफिकेसी मोर देन 90% हो जाती है। तो ये कंपेरेबल है अगेंस्ट द बेस्ट वैक्सीन जो जहाँ पे भी है। और ये वैक्सीन जो है ये एब्सोल्युटली सेफ है। जो नॉर्मल हमारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं बाकी वैक्सीन में, जैसे फीवर आना, लोकल पेन होना, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स होना, हेडेक वगैरह, जो नॉर्मली हर किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वही इसमें भी होने का अंदेशा होता है कुछ परसेंट लोगों में। वरना ये बाकी ओवरऑल अगर देखें तो ये एब्सोल्युटली सेफ है। तो इस माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ पूरे हेल्थ वर्कर्स से कि जो इस टाइम जब भी उनका डिजिग्नेटेड टाइम आए वो आए वैक्सीन करें, उससे वो भी सेफ रहेंगे और ओवरऑल हमारी सोसाइटी भी सेफ रहेगी।
उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह सुरक्षित है और अगर कोई भी इसके विरोध में अफवाह फैलाता है तो वो मानव के विरोध में अफवाह फैला रहा है। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अब पेश है प्रोग्राम नया सवेरा, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का आखिरी प्रोग्राम ईरान भ्रमण।
नया सवेरा।
दोस्तों, कार्यक्रम नया सवेरा लेकर उपस्थित हैं, जिसमें डेनमार्क की ताज़ा मुसलमान महिला के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद मेहदी का सलाम, स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जो गैर मुसलमान मुसलमान बनते हैं उनके लिए इस्लाम का एक आकर्षण यह है कि इसकी शिक्षाएं तार्किक हैं, जिसे मनुष्य की बुद्धि स्वीकार करती है। इस्लाम की विशेष बात यह है कि वो अपने मानने वालों को सृष्टि में चिंतन मनन करने और ज्ञान प्राप्त करने का आह्वान करता है। इस काम के लिए वो मुसलमानों को अलग अलग ढंग से प्रेरित भी करता है। इस्लाम की ये शैली उन लोगों को बहुत अधिक अपील करती है जो अपने धर्म की कुरीतियों, बुरी परंपराओं और अतार्किक बातों से थक चुके हैं। डेनमार्क की रहने वाली साइमन डोइन वांग कहती हैं कि मैं इस्लाम को ज्ञान विज्ञान का समर्थक धर्म मानती हूं। वे कहती हैं कि मेरा नाम साइमन डोइन वांग है, डेनमार्क मेरी जन्म स्थली है। उनका कहना है कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गहन अध्ययन किया है, वर्तमान समय में मैं व्यापार में बिजी हूं। साइमन कहती हैं कि इस समय मैं doingwang.com पर इस्लामी पोस्टर का व्यापार करती हूँ। यूरोपीय देशों में रहने वाले बहुत से ईसाई इस वजह से अपने धर्म को नहीं मानते कि उनके मन में धर्म के बारे में प्रश्न उठते हैं, उनके तार्किक एवं संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते। इसी वजह से वहाँ के बहुत से लोग या तो नाम के धार्मिक होते हैं या फिर अधर्मी बन जाते हैं। साइमन का परिवार भी धर्म में आस्था नहीं रखता। वे अपने बारे में कहती हैं कि धर्म पर मेरी कोई विशेष आस्था नहीं थी, किंतु सृष्टि के बारे में मेरे मन में बहुत से सवाल थे जिनके जवाब के लिए मैं परेशान रहा करती थी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा भविष्य कैसा होगा। سائمن کہتی ہیں کہ میرا پریوار ادھرمی ہے، یہی کارن ہے کہ ان کے پاس میری باتوں کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ انہی باتوں کے درشٹیگت سائمن نے پہلے اپنے دھرم کا رخ کیا، کنتو وہاں پر اپنے سوالوں کے جواب ان کو نہیں مل سکے۔ بعد میں انہوں نے دوسرے دھرموں کی بھی کھوج کی اور اپنے سوالوں کے جواب جاننے چاہے، کنتو ان کے اتر نہ پا کر وہ بہت نراش ہوئیں۔ انت میں انہوں نے اسلام سے اپنے سوالوں کے جواب جاننے چاہے۔ سائمن ڈوئنگ وانگ کا کہنا ہے کہ میں گیان سے پریم کرتی ہوں، میرے انبھو نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ اسلام گیان وگیان کو مہتو دیتا ہے۔ وہ پوتر قرآن کو اپنے مسلمان بننے کا کارک بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھ کو پتہ چلا کہ اس میں بہت مہتوپورن جانکاریاں موجود ہیں۔ قرآن تارکک ہے اور اپنی بات کو ترک سے پیش کرتا ہے۔ سائمن کہتی ہیں کہ ایران میں پیغمبر اسلام کے پودر امام رضا علیہ السلام کے روضے پر جا کر میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئی۔ مجھ کو کلمہ پڑھ کر بہت شانتی ملی اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے سچا دھرم تلاش کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو پتا تھا کہ مسلمان بننے کے بعد مجھ کو اپنے پریوار کے سدسیوں کی ناراضگی اور اپنے سماج میں تانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کنتو میں نے ان سب کو اسلام کی وجہ سے سویکار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ پہلی بار جب میں نے قرآن پڑھا تو اس سمے میری جو استھتی تھی اس کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں جب جب قرآن پڑھتی ہوں تو مجھ کو سکون ملتا ہے، یہ مجھ کو بھوتکتا سے دور کرتے ہوئے صحیح راستے کی اور لے جاتا ہے۔ سائمن ڈوئنگ وانگ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام پر اترنے والی ان پہلی آیتوں کو میں بہت مہتو دیتی ہوں جن میں پڑھنے پڑھانے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں جن میں پڑھنے کا آدیش دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ واسطوتا کو سمجھنے کا صحیح اچت مارگ پوتر قرآن کا پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ سائمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسی بہت سی سائٹیں ہیں جو اسلام کی چھوی کو بگاڑ کر پیش کرتی ہیں، اتھا ایسے میں ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سائمن کا ماننا ہے کہ غیر مسلمانوں کے لیے اسلام کو پیش کرنے کا سب سے اچھا راستہ اس کے مول سدھانتوں کو بیان کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کام میں نے اپنے پریوار کے سدسیوں اور متروں کے ساتھ کیا جنہوں نے میری بات سویکار کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں بتایا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلے انگریزی بھاشا میں اس کا انواد ان کو سنایا اور بعد میں سوئم ان کے سامنے نماز پڑھی۔ سائمن ڈوئنگ وانگ کہتی ہیں کہ میرے دیش ڈنمارک میں دھارمک جیون گزارنے کے لیے واتاورن پوری طرح سے اپیوکت نہیں ہے، وہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں بہت سی سمسیائیں آتی ہیں۔ یہی کارن ہے کہ ڈنمارک میں دھرم کے بہت سے نیموں کو ویوہارک بنانے پر پابندی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب منش کے من میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر سمسیاؤں اور پریشانیوں کو سہن کرنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ سائمن ڈوئنگ وانگ حجاب کے بارے میں کہتی ہیں کہ حجاب کو میں کیول اپنے ایشور کے لیے کرتی ہوں، کنتو اسے دوسروں کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ میں پردے سے اپنے بالوں کو اس لیے چھپاتی ہوں تاکہ دوسرے یا اجنبی لوگ اس اور نہ دیکھیں۔ میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھ کو واسنا کی نظر سے دیکھیں۔ حجاب کے بارے میں ڈنمارک کی اس مسلمان مہیلا کا کہنا ہے کہ میں یہ نہیں مانتی کہ حجاب کا ارتھ کیول سر یا منہ کو چھپانا ہے، بلکہ یہ ایک آدھیاتمک استھتی کا نام ہے۔ उनका मानना है कि पर्दा महिला और पुरुष दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है कि अगर किसी पुरुष की नज़र किसी स्त्री पर पड़ती है तो उसे तुरंत अपनी नज़रें नीची कर लेनी चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को ही हिजाब के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। साइमन का कहना है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि पर्दे के कारण मुझ पर अत्याचार हो रहा है या फिर मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने स्वेच्छा से हिजाब को स्वीकार किया है। हिजाब से मैं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझको हिजाब बहुत पसंद है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि साइमन के अनुसार सामाजिक वातावरण को मजबूत बनाने के लिए समाज में हिजाब या पर्दा आवश्यक है। उनका कहना है कि डेनमार्क सहित पश्चिमी देशों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में साइमन कहती हैं कि पश्चिमी लोग शराब और वासना वाले वातावरण में पलते बढ़ते हैं, यही कारण है कि उनको इसकी लत पड़ जाती है। पश्चिमी महिलाएं बहुत ही अनुचित ढंग से समाज में दिखाई देती हैं। साइमन डोइंग वांग बताती हैं कि हमको सिखाया जाता है कि हम अधिक से अधिक आकर्षित दिखाई दें, यही कारण है कि वहाँ की महिलाएं पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाती हैं। पश्चिमी महिलाओं की अहमियत इसी बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी अधिक आकर्षक लगती हैं। उनका कहना है कि मैं इस नारे को कभी स्वीकार नहीं करती कि कम कपड़ों या छोटे कपड़ों में ही महिला आज़ाद है। साइमन कहते हैं कि पश्चिम में महिलाओं के अधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। मैं ये नहीं मानती कि पश्चिम में महिलाओं को वास्तव में सम्मान दिया जाता है। साइमन का कहना है कि पश्चिम के विपरीत इस्लाम में महिलाओं के मूल्यों को महत्व दिया गया है। वहाँ पर महिला भोग विलास की वस्तु न होकर एक इंसान है। वहाँ पर दोनों के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, जिनमें आपस में कोई टकराव नहीं है। बहरहाल साइमन डोइंग वांग के देश में आज भी इस्लामोफोबिया को समर्थन दिया जाता है। इसका एक उदाहरण इस देश की एक पत्रिका में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमानजनक चित्र का प्रकाशन है। सन 2005 में डेनमार्क में पैगंबर इस्लाम का अपमानजनक चित्र प्रकाशित किया गया था, जिसका पूरे विश्व में खुलकर विरोध किया गया था। इससे संसार में रहने वाले लगभग 1.5 अरब मुसलमानों की आस्था को आघात पहुंचा था। साइमन कहती हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से आम लोगों में जिज्ञासा बढ़ती है, जो बाद में उनके मुसलमान होने का कारण बनती है। साइमन डोइंग वांग बताती हैं कि मुझको ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो वास्तविक इस्लाम की तलाश में हैं। इस प्रकार से डेनमार्क में मुसलमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो श्रोताओ, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण के कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज हम आपको दक्षिणी खुरासान के ऐसे नगर की यात्रा पर ले चलेंगे जिसे लाल सोने की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी खुरासान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कायन है। ये दक्षिणी खुरासान प्रांत के उत्तर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 17,722 वर्ग किलोमीटर है। कायन जिले के पूर्वी भाग की लगभग 130 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है कि दक्षिणी कायन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुनीक नामक गुफा में आरंभिक काल के लोग रहा करते थे, जिनका इतिहास पाषाण काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कायन क्षेत्र का इतिहास 30,000 साल पुराना है। ये उन स्थलों में शामिल है जहां खुरासान की सभ्यता ने जन्म लिया।
استخری ناصر خسرو کوبادیانی، عبداللہ محمد بن احمد مقدسی، حمداللہ مصطفی اور انیہ پرمکھ اتہاسکاروں نے اپنی کتابوں میں قائن کا الیکھ کیا ہے۔ مارکو پولو نے اپنے یاترا ورتانت میں قائن کو تونو قائن کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ شاید اسی لیے ہے کیونکہ تونو قائن برہتر قہستان کے دو نگروں تون اور قائن سے مل کر بنا ہے۔ استخاری نے اتہاس کی اپنی کتاب میں ورش 340 ہجری شمسی میں قہستان کے کیندر کے روپ میں قائن کا الیکھ کیا ہے اور اس شیطر کے لوگوں کا مت شیعہ بتایا ہے۔ ناصر خسرو قبادیانی 440 ہجری شمسی میں قائن میں پہنچا تھا اور اس نے قائن کو بڑا شہر بتایا تھا۔ وینس کے مارکو پولو نے بھی قائن کی جلوایو کو سنتولت کہا تھا۔ یاقوت حموی اور عبداللہ محمد بن احمد مقدسی نے قائن کی اپما خراسان کی بندرگاہ اور کرمان کے خزانے سے دی ہے۔
ساسانیان شاسن شرنکھلا کے کال میں قائن کو ایران کے مہتوپورن اسٹریٹجک نگروں میں گنا جاتا تھا۔ اسلامی کال میں بھی قائن نگر قہستان کے بڑے نگروں میں سے تھا۔ اس کا مکھیہ کارن یہ تھا کہ قائن نگر سستان کرمان مارگ اور عمان ساگر کے تٹورتی علاقہ تھا جہاں سے ویاپاری کارواں گزرا کرتے تھے۔ اس کے ویاپاری کے مہتو کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ 4 ہجری قمری میں اتہاسکار مقدسی نے قائن کو عمان کا پرویش دوار کہا تھا۔ اسلامی کال میں یہ بہت ہی اپجاؤ بھومی والا نگر تھا جس کے چاروں اور کھندک کھدی ہوئی تھی جس کے نشان اب بھی باقی ہیں۔
دوستو، پراچین اوشیشوں کی درشتی سے کائن یا کائنات بہت ہی سمردھ استھل ہے۔ یہاں پر 170 سے ادھک پراچین کال کے اوشیش پائے جاتے ہیں، جن میں پراچین ٹیلوں، پراچین استھل، پراچین قلعے، مقبرے، گفائیں، بہت پرانے پیڑ، پتھر کے شرن استھل اور بھومیگت قلعوں آدی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان ایتیہاسک اوشیشوں کے اترکت چھیتر میں پروت شرنکھلا بھی ہے جو بھاتی بھاتی کی گفاؤں کا کارن بنی ہے۔ ادھکانش گفائیں نگر کے کیندری بھاگ میں استھت ہیں۔ یہ گفائیں جہاں پر آکرشک ہیں، وہیں ان کے بھیتر پراکرتک سوندریہ بھی پایا جاتا ہے۔
قائن میں 40 ایتیہاسک درگوں کا پتہ چلا ہے، جن میں سے ادھکانش کا نرمان 1000 ورش سے بھی پہلے اسماعیلیوں کے دور میں کیا گیا تھا۔ یہاں پر سلجوکی کال کے اترکت لگ بھگ 2000 سال پہلے ارتھات ساسانی کال کے بھی قلعے موجود ہیں۔ قائن نگر کی ایتیہاسک عمارتوں میں سے ایک وہاں کی جامع مسجد بھی ہے، جس کا سمبندھ 8 ہجری شتابدی سے ہے۔ یہ مسجد نہ کیول قائن نگر کی بلکہ ایران کی प्राचीनतम मस्जिदों में से एक है। कायन की प्राचीन जामा मस्जिद 2470 वर्ग मीटर में बनी हुई है। इसकी वास्तुकला शैली गौहर शाद मस्जिद जैसी है। इस मस्जिद के दो प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक पूर्व की दिशा में जबकि दूसरा उत्तर की दिशा में खुलता है। विभिन्न कालों में कायन की जामा मस्जिद की मरम्मत कराई गई है। 29 आजर सन 1361 हिजरी शमसी में इसे ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया गया।
कायन नगर में एक जल संग्रहालय भी है। ये दक्षिणी खुरासान का एकमात्र जल संग्रहालय है। मरम्मत के बाद इसे सन 1386 हिजरी शमसी में बनाया गया था। यह संग्रहालय नगर के प्राचीन बाजार में मौजूद है, इसीलिए इसे बाजार संग्रहालय के नाम से भी पुकारते हैं। वर्तमान समय में ये नगर के एक पर्यटन स्थल में बदल चुका है। इस संग्रहालय में दिखाया गया है कि प्राचीन काल में जब पानी निकालने की आधुनिक व्यवस्था नहीं थी तो किस प्रकार से पानी को विभिन्न स्रोतों से निकालकर प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर प्राचीन काल की पंचक्कियों, भूमिगत जल स्रोतों, पुराने बांधों और पानी का भंडारण करने वाले पुराने उपकरणों के चित्र भी रखे हुए हैं।
कायन नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर बूजर जमहर नाम का एक पर्यटन स्थल है, जो 509 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। ये पर्यटन स्थल पर्वत श्रृंखला के आंचल में स्थित होने के कारण बहुत ही आकर्षक है। ये पर्यटन स्थल कहिस्तान के राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। कायन में अबुल मफाखिर का मकबरा, अबू जर जमहर की कब्र, चहल दुख्तर नामक किला और कूह किले नाम की इमारतें भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ पर एक मशहूर तत्वदर्शी बूजर जमहर की कब्र है, जिनका पूरा नाम कासिम बिन इब्राहिम बिन मंसूर था। उनका संबंध 4वीं और 5वीं हिजरी कमरी से था। वे एक आत्मज्ञानी होने के साथ ही कवि और राजनेता भी थे। वे तत्कालीन शासक सुल्तान मसूद गजनवी के दरबार में कार्यरत थे। उनके मकबरे को एक क्रॉस के रूप में बहुत ही सुंदर वास्तुकला की शैली में बनाया गया है। इस मकबरे को 6वीं या 7वीं हिजरी कमरी में बनाया गया था। बूजर जमहर कायनी के इस मकबरे को ईरान के राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है।
कायन नगर के दक्षिणी छोर पर किलेकू नामक किला मौजूद है। नगर से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। दक्षिणी खुरासान के बड़े और महत्वपूर्ण किलों में इसकी गणना होती है। ये किला वर्षों तक कहिस्तान प्रांत के शासकों का सत्ता केंद्र रह चुका है। यहीं से वे अपनी सत्ता को चलाया करते थे। किला को इस्माइलियों की प्रमुख शरणस्थली भी रहा है। इस्माइली विगत में गुट था, जिसने 5वीं हिजरी शताब्दी के अंत और 6वीं हिजरी शताब्दी के आरंभ में गजविन के अलमोद किले पर नियंत्रण करने के बाद इस्माइली सरकार का गठन किया था। इस्माइली लोग सामान्यतः अब्बासी शासकों और मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष किया करते थे। इस्माइलियों के एक नेता का नाम हसन सब्बाह था, जिन्होंने इस्माइली शासन का विस्तार करते हुए उसे सीरिया तक बढ़ा लिया था। बाद में हलाकू खान के हमले के बाद इस्माइलियों की सत्ता का अंत हो गया।
किले की एक विशेषता ये थी कि यहाँ से दुश्मन को बहुत आसानी से दूर से देख लिया जाया करता था। इसका मुख्य कारण यह था कि किला पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ था, जहाँ से मैदानी क्षेत्र की गतिविधि सरलता से देखी जा सकती थी। जब भी वहाँ के शासकों को किसी भी प्रकार के आक्रमण का भय होता था तो वे इस किले की ऊंचाई पर जाकर शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखते और फिर اس سے مقابلے کے لیے اسی حساب سے رڑنیتی تیار کرتے تھے۔ اس قلعے کو دو حصوں میں بنایا گیا تھا، ایک حصے میں شاسک ورگ رہتا تھا جبکہ دوسرے حصے میں سینا رہتی تھی۔ اس قلعے میں ہزاروں سینکوں کے رہنے کا پربندھ کیا گیا تھا۔ اس قلعے کی نرمان شیلی سے لگتا ہے کہ اس کا سمبندھ ساسانی شاسن کال سے رہا ہوگا۔ ورتمان قلعے کو پرانے قلعے کے کھنڈر پر بنایا گیا ہے۔ اس کے نرمان میں ادھکانش پتھر کا پریوگ کیا گیا ہے۔
دوستو، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قائن نگر میں بہت سے ایتیہاسک اوشیش پائے جاتے ہیں۔ کارکرم میں ہم ان کا وستار سے الیکھ نہیں کر سکتے۔ انت میں ہم آپ کو سنکشپ میں قائن نگر کے ایک انیہ ایتیہاسک عمارت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خانہ سلطانی کے نام سے مشہور ہے۔ خانہ سلطانی کا سمبندھ زندیا کال سے ہے۔ ورتمان سمے میں اسے مانو وگیان کے سنگرالے کے روپ میں پریوگ کیا جا رہا ہے۔ اس کا سمبندھ قائن نگر کے ایک گنمانیہ خاندان سلطانی سے تھا۔ ایک سمے میں سلطانی خاندان قائن میں بہت ہی مشہور تھا۔
بعد میں قائن کی نگر پالیکا نے خانہ سلطانی کو خرید لیا، بعد میں اس کی مرمت کروائی۔ اس میں پہنچ کر ہم قائن نگر کی پراچین سنسکرتی اور وہاں کی پرمپرا کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر قائن کے پرانے لوگوں کے چتر، ان کی جیون شیلی اور اس نگر میں کیے جانے والے پیشوں کو چتروں کے مادھیم سے سمجھانے کا پریاس کیا گیا ہے۔ اس سنگرہالے میں وواہ سماروہ، استھانی سنگیت، لوک نرتیہ، پارمپرک کرشی، قالین کی بنائی اور اسی پرکار دینک جیون سے سمبندھت وشیوں کو چتروں کے مادھیم سے درشایا گیا ہے۔ تو شوتاؤ، اسی کے ساتھ یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انمت دیں، خدا حافظ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتاؤ، ہماری سبھا آپ کو کیسی لگی اور اس میں پیش کیے گئے کاریکرم کیسے تھے، اس بارے میں آپ ہمیں اوشی بتائیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، hindiradio@wsirib.ir۔ ہمارے کاریکرموں کو آپ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، parstoday.com/hi۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔